आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 16, नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। तो ये जो कहानी हम पढ़ेंगे ये वास्तव में किसके बारे में लिखी गई है? बिस्मिल्ला खान जी की। बिस्मिल्ला खान जी एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्हीं के बारे में, उनके जीवनचर्या के बारे में इसमें यतीन्द्र मिश्र जी ने बताया है, जिससे हम बिस्मिल्ला खान जी को और अच्छे से जान पाए। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स के पेज नंबर 114 पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 114 पे शुरू करते हैं लेखक परिचय। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1977 यानी 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, और इन्होंने लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए पूरा किया और आजकल वो क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र लेखन, ठीक है, फ्रीलांसिंग राइटिंग कर रहे हैं और एक अर्धवार्षिक पत्रिका है सहित। अर्धवार्षिक यानी जो एक वर्ष में दो बार निकलती हो, उसका वो संपादन भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने 1999 में एक विमला देवी फाउंडेशन का संचालन शुरू किया, जिसका काम है साहित्य और कलाओं का संवर्धन, है ना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना, साहित्य के बारे में लोगों को जानकारी देना। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है, यानी कि इनके काव्य संग्रह 3 प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। ठीक है, यानी इनके अपने निजी काव्य संग्रह ये 3 प्रकाशित हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं या उनका संपादन किया है, जैसे गिरिजा हो गई, है ना, कुंवर नारायण पे पुस्तक हो गई, या रीतिकाल के जो आखिरी कवि थे द्विजदेव, उनकी ग्रंथावली का सह संपादन भी किया, थाती का संपादन किया, और इन्हें बहुत से पुरस्कार जैसे भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज जैसे बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेखक की रुचि कविता में है, है ना, काव्य में है, संगीत में है, ऐसी कलाओं में है और संस्कृति के क्षेत्र में वो गहरी रुचि रखते हैं, जो कि लगभग उनकी सारी रचनाओं में दिखाई देता है कि उन्हें अपनी संस्कृति से कितना प्यार और लगाव है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 115 पे। यहाँ हम पाठ परिचय पढ़ेंगे, है ना, यानी इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्ला खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, ये जो इन्होंने एक व्यक्ति चित्र लिखा है नौबत खाने में इबादत। ये किसके ऊपर है? प्रसिद्ध शहना इबादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी। ये बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं, लिखते हैं, है ना। और इसमें इन्होंने बिस्मिल्ला खान का परिचय दिया है, साथ में उनकी रुचियों के बारे में बताया है ना, उनकी आदतों के बारे में बताया है, संगीत को लेके उनकी क्या साधना रही है, उनकी क्या रुचि रही है वो बताया है, कितने लगन से वो काम करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कला को भी पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने कला को भी साथ में लेके चले हैं कि कलाकार तो महत्वपूर्ण होता ही है, जैसे बिस्मिल्ला खान जी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी कला उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगीत जो है वो एक आराधना होती है ना, इसका भी अपना एक विधि विधान है, पूरा शास्त्र है, और जिसके लिए इसका अभ्यास करने के लिए, इसको सीखने के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है ना। यानी आपका कोई गुरु होगा तभी आप उसे अच्छे से सीख पाएंगे। पूर्ण तन्मयता जरूरी है ना, यानी पूरी लगन होनी चाहिए आपको, धैर्य होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जल्दबाजी करना है कि आज ही सीख जाए, बहुत समय लगता है एक अच्छा कलाकार बनने में। मंथन होना चाहिए विचारों का, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्ला खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रहती है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो तन्मयता, जो लगन, जो धैर्य चाहिए होता है वो बिस्मिल्ला खां में हमेशा से है। इसीलिए जब वो 80 वर्ष के हो गए है ना, इतनी लंबी उम्र में पहुंच के 80 वर्ष में भी उनकी संगीत को लेके साधना जो है, जो लगन है वो कम नहीं हुई है। और यतीन्द्र मिश्र को भी संगीत की जो शास्त्रीय परंपरा है उसकी जानकारी है, उसमें रुचि है, और ये बात कहीं ना कहीं पाठ पढ़ते वक्त हमें बार बार पता चलेगी। और जब ये पाठ कोई पढ़ लेता है तो वही बातें याद करके, इनकी जानकारी को देखते हुए, इनकी रुचि को देखते हुए, हमें बार बार ये पाठ पढ़ने का मन करता है। भाषा कैसी है इनकी? बहुत ही सहज आसान है, एक प्रवाह में चलती है, फ्लो में चलती है। और इन्होंने जगह जगह प्रसंग संदर्भ, जहां जहां जरूरत पड़ी है, घटनाओं के प्रसंग भी बताए हैं। ठीक है, पेज नंबर 116 पे आ जाइए, पाठ शुरू करते हैं, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि पाठ का मतलब क्या हुआ। इबादत मतलब होता है उपासना करना या पूजा करना, है ना, अपने आराध्य को मानना। ठीक है, और नौबत खाना मतलब क्या होता है, जो भी प्रवेश द्वार होता है ना, किसी जगह के घुसने के लिए द्वार, उसके ऊपर मंगल ध्वनि, है ना, शुभ ध्वनि बजाने के लिए एक स्थान तय किया गया होता है, जिसे कहते हैं नौबत खाना। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अब पाठ कहाँ से शुरू हो रहा है, 1916 से 1922 के बीच में काशी, काशी जिसे आज हम क्या कहते हैं, बनारस या वाराणसी, ठीक है, उसकी बात है काशी की। वहां पे एक घाट है पंचगंगा, पंचगंगा घाट पे एक मंदिर, बालाजी का मंदिर, उसकी ड्योढ़ी यानी दहलीज, और दहलीज पे बना नौबत खाना। ठीक है, नौबत खाना प्रवेश के द्वार के ऊपर, जहां लोग बैठ के मंगल ध्वनि बजाएं कि जब कोई वहां से घुसे तो उसके कानों में सबसे पहले वो मंगल ध्वनि, वो शुभ ध्वनि पड़े। ठीक है, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजे मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र रही है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामजे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं, 2 बच्चे हैं, एक अमीरुद्दीन जो केवल 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन वो 9 साल का है। अब क्योंकि अमीरुद्दीन 6 साल का इतना छोटा बच्चा है तो उसे नहीं पता कि राग क्या होता है, किसे कहते हैं, किसका नाम है, क्या चीज है ये। उसे नहीं पता, लेकिन उसने हमेशा सुना है कि जो उसके मामू जान यानी उसके जो मामा जी हैं या घर के और लोग हैं, वो हमेशा भीम, पलासी, मुल्तानी, ये रागों के नाम हैं, इनके नाम लेते रहते हैं। उन्हें उसे इस शब्दों का मतलब नहीं समझ में आता, क्यों, उसकी उम्र ही कितनी है बेचारा, इतने बड़े बड़े इतने भारी शब्दों को कैसे समझ सकता है ना, वो तो एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन उसे इतना पता है कि इन दोनों के जो मामा हैं सादिक हुसैन और अली बख्श, ये देश के बहुत ही बड़े शहनाई वादक हैं, यानी शहनाई बजाने वाले हैं, और ये कई जगहों पे जाते हैं, बहुत से रियासतों में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, लोग इन्हें निमंत्रण देते हैं कि आएं और हमारे रियासत में अपनी शहनाई बजाकर चार चांद लगा दें। वही जहां ये रोज बजाते हैं उनमें सबसे ऊपर क्या आता है, बालाजी का मंदिर, यानी अपनी दिन की शुरुआत कहाँ करते हैं, बालाजी के मंदिर की जो दहलीज है वहीं पे सबसे पहले ये शहनाई बजाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब लेखक ये कह रहा है कि मंदिर के विग्रह, यानी मंदिर में जो मूर्तियां लगी हैं, विग्रह यानी जो मूर्तियां लगी हैं, पता नहीं उनको कितनी समझ है इस राग की, संगीत की, कि वो हर दिन कभी मुल्तानी सुनते हैं, कभी कल्याण सुनते हैं, कभी ललित सुनते हैं, कभी भैरव सुनते हैं, यानी बदल बदल के अलग अलग राग सुनते रहते हैं, पता नहीं उन्हें समझ आता भी है या नहीं। ये अली बख्श कौन है, अमरुद्दीन और शमशुद्दीन का मामा, इनके घर का खानदानी पेशा है, इनके अब्बा जान यानी इनके जो पिताजी थे वो भी दहलीज पर शहनाई ही बजाते थे, ठीक है, यानी शहनाई बजाना इनका खानदानी पेशा है, सब लोग बजाते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। पांच छह वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्ला खाब साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्ला खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। अब वो क्या बताते हैं, अमरुद्दीन, ठीक है, जो 6 साल का छोटा सा बच्चा है, उनका जन्म कहाँ हुआ, डुमराव में। ये बिहार का एक छोटा सा गाँव है। उस डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार था, एक ऐसा परिवार जिसको संगीत से बहुत प्यार हो, उसमें अमरुद्दीन का जन्म हुआ, ठीक है। तो 5-6 साल वो अपने गांव डुमराव में रहे और उसके बाद अपने नाना के घर काशी में आ गए, ननिहाल में, ठीक है। उनके नाना का घर कहाँ था, काशी में, और उनका गांव कहाँ था, डुमराव में। तो अब लेखक बताता है कि जो डुमराव जो गांव है, इसका इतिहास में कोई स्थान है या नहीं, कोई महत्व है या नहीं, ऐसा नहीं लगता, पता नहीं कि इतना महत्वपूर्ण ये गाँव है या नहीं, लेकिन शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, क्योंकि शहनाई जो वाद्य यंत्र है, इसे जब बजाया जाता है तो इसको कैसे बनाया जाता है, रीढ़ से, ठीक है। रीढ़ जो होती है वो अंदर से पोली यानी खोखली होती है, जिसमें जब हम फूंकते हैं तो अलग अलग राग, अलग अलग स्वर निकलते हैं, और ये रीढ़ एक नरकट नाम की घास से बनाई जाती है, और ये नरकट घास हमें डुमराव में ही सोन नदी के पास मिलती है, ठीक है। इसीलिए शहनाई के लिए डुमराव गांव जरूरी हो गया, क्योंकि डुमराव में वो घास मिलती है। इतनी ही महत्ता है डुमराव की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये घास मिलती है जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बज पाता है। अब शहनाई के लिए डुमराव जरूरी हो गया, डुमराव के लिए शहनाई क्यों जरूरी है, क्योंकि अमीरुद्दीन ये जो बच्चा जो हम सबके प्रिय हैं, वो कौन है, असल में उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब, इनका जन्म स्थान डुमराव है ना। इनके जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खां, वो डुमराव के ही रहने वाले थे, और उस्ताद बिस्मिल्ला खां के माता पिता का नाम क्या है, पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन। इनके ये छोटे साहबजादे हैं, यानी छोटे बेटे हैं, ठीक है। अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 117 पर। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्ला खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्ला खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की मार पर ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्ला खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। अब देखिए आगे की कहानी बताते हैं लेखक कि जो अमीरुद्दीन है इनकी उम्र 14 साल हो गई, यानी जो बिस्मिल्ला खान जी है अब 14 साल इनकी उम्र हो गई है। ये वही काशी है, काशी में वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ पे बिस्मिल्ला खान को नौबत खाने पे रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज यानी अभ्यास करने के लिए, संगीत का अभ्यास करने के लिए, संगीत सीखने के लिए जाना पड़ता है। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता एक ही है और जब वो यहाँ से होकर गुजरते हैं तो उन्हें रसूलन भाई और बतूलन भाई, ये दो बहनें थी जो अक्सर संगीत का अभ्यास कर रही होती थी। क्या गाती थी? ठुमरी, टप्पे, दादरा, ठीक है, ऐसे गा रही होती थी, जिसके प्रति बिस्मिल्ला के मन में एक अलग ही लगाव था। उनको ये गाने सुन के बड़ी खुशी मिलती थी और जब वे बड़े हो गए, प्रसिद्ध हो गए, तो बहुत से साक्षात्कारों में, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में, ठीक है, बिस्मिल्ला खान ने ये स्वीकार किया कि जीवन के आरंभिक दिनों में यानी शुरुआती दिनों में जो एक लगाव पैदा हुआ उनको संगीत को लेके, गानों को लेके, वो इन्हीं बहनों को सुनकर हुआ है। इसीलिए ये कह सकते हैं अबोध उम्र यानी जब नादानी की उम्र होती है, मासूमियत होती है बच्चे में, उस समय उनको इनके गाने सुन के एक संगीत की प्रेरणा मिली थी, रसूलन बाई की और बतूलन बाई की। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अब अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, उसको नए बोलते हैं। शहनाई को शहनाय अर्थात सुशीर वाद्यों में शह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो वैदिक इतिहास रहा है यानी पुराना समय जब हम वेदों की पढ़ाई करते थे तब शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, है ना, शहनाई के बारे में उस समय ज्यादा जानकारी नहीं है। इसे संगीत शास्त्रांगत, है ना, संगीत के जो शास्त्र है उसमें सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। और देश में जो फूंक कर बजाया जाता है ना, यानी जिसमें फूंक का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जो वाद्य यंत्र हैं उनमें नरकट या रीढ़ का प्रयोग होता है जिसे हम नाड़ी कहते हैं। इसी कारण इन जो ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें नए बोला जाता है, ठीक है, यानी शहनाई असल में क्या हुई, शहनाई। और ये शहनाई जो है यानी इसे जितने भी सुशीर वाद्य हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं, हवा के प्रयोग से बजाए जाते हैं, उसमें ये शाह है, शाह यानी राजा है। और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन ने जो बंदिश रची, ठीक है, उसमें उन्होंने जो संगीत के राग लिखे, उसमें जो संगीत के वाद्य यंत्र लिखे उनका जिक्र आया है, उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग जैसे वाद्य यंत्रों का भी जिक्र आया है, ठीक है, ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये वाद्य यंत्र हैं। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो अवधि के पारंपरिक लोकगीत हैं ना ये चैती हैं, उनमें शहनाई का उल्लेख मिलता है, शहनाई के बारे में जानकारी दी जाती है। और शहनाई को क्या माना जाता है कि ये मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करेगा, यानी वातावरण को शुभ बनाएगा, ना कोई भी अगर शुभ अवसर होता है तो उस पे शहनाई को बजवाना अच्छा मानते हैं। मांगलिक अवसर हो गए, शुभ अवसर हो गए, जैसे शादी ब्याह, जन्मदिन, बच्चे का जन्म, तो ऐसे समय पे अगर शहनाई बजती है तो इसे शुभ सूचक माना जाता है। जैसे दक्षिण भारत में एक नाग स्वरम वाद्य यंत्र है जिसे मंगल सूचक माना जाता है, यानी अच्छा, शुभ माना जाता है, वैसे ही शहनाई जो है वो प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक, यानी जो प्रभाती जो सुबह गीत गाए जाते हैं उनका। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत। 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। शहनाई के जो मंगल ध्वनि है, यानी जो ये शुभ आवाज है, इसके जो नायक है, नायक यानी जो हीरो है, वो कौन है? बिस्मिल्ला खान साहब। वो 80 बरस की उम्र में भी, यानी 80 साल के हो गए हैं और अभी भी सुर की मांग कर रहे हैं, यानी उन्हें इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि उनको अभी भी सुर की पहचान नहीं है, वो क्षेत्र में नादान है। इसीलिए वो अभी भी खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते हैं ना, यानी वरदान मांगते हैं कि मुझे ये सच्चा सुर दे दो। पांचों बरस की नमाज, हमारे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पांच बार नमाज पढ़ते हैं एक दिन में, तो वो कह रहे हैं कि 80 साल के हो गए हैं और 80 साल तक वो पांचों टाइम जब भी नमाज पढ़ते हैं सिर्फ एक सुर ही मांगते हैं, यानी उनकी सारी नमाज बस सुर मांगने में खर्च हो जाती है। लाखों बार सजदे करते हैं, यानी सिर झुकाते हैं, इबादत करते हैं, उपासना आराधना पूजा करते हैं, लेकिन हर बार खुदा के आगे बस यही कहकर झुकते हैं कि मुझे एक सुर दे दो। नमाज के बाद क्या कह के गिड़गिड़ाते हैं, क्या विनती करते हैं? मेरे मालिक, यानी हे खुदा, मुझे एक सुर बख्श दे और मेरे सुर में ऐसी तासीर हो, यानी मेरे सुर में ऐसा गुण हो कि जो भी सुने उसकी आंखों में से सच्चे आंसू निकलने लगे, इतनी अच्छी हो जाए मेरी ये जो कला है। ठीक है, यानी अभी भी वो कला को लेके रियाज करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग, क्या होता है, किसी चीज को सीख लिया तो हम एक घमंड में आके बैठ जाते हैं कि अब हम परफेक्ट हो गए। वो खुद को परफेक्ट नहीं मानते, हमेशा सीखने वाली स्थिति में ही रहते हैं कि अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी और सीखना है। अब वो कहते हैं कि उनको यकीन है, उनको भरोसा है कि जो उनका खुदा है वो एक दिन उन पे मेहरबान होगा और सुर का जो फल है वो कहेगा उछाल के कि इसको खा लो और अपनी मुराद यानी अपनी इच्छा पूरी कर लो, यानी जो सुर है ये तुम्हारी आवाज में आ जाएगा। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गर्मी उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्ला खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। यानी अब वो क्या कह रहे हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से या किसी न किसी दुविधा से परेशान होके कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां अपनी चिंताओं को, अपनी दुर्बलताओं को, यानी कमजोरियों को छोड़ दें और वहां से अपने लिए एक नया तिलिस्म, एक नया जादू तैयार करें, है ना, अपने लिए एक अच्छा जीवन तैयार करें। जैसे हिरन जो है, कस्तूरी हिरन होता है ना, वो पूरे जंगल में घूमता है ये सोच के कि कस्तूरी की महक कहाँ से आ रही है, जबकि कस्तूरी उसी के पास होती है, उसे पता ही नहीं होता है। वही वो कह रहे हैं कि हिरन जो है अपनी महक से परेशान जंगल में घूमता है पर उसे पता ही नहीं होता कि ये वरदान तो उसी के पास है। वैसे ही बिस्मिल्ला खां भी 80 साल के हो गए हैं, हर कोई उनका कायल है, हर कोई उनके शहनाई के सुर को सुन के खो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन अभी भी बिस्मिल्ला खां जी क्या सोचते हैं कि उनको सातों सुरों को तमीज से, सलीके से सुनाना नहीं आया है और इसका इस्तेमाल वो न जाने कब सीख पाएंगे। 118 पे आ जाइए, पेज पे 118 पे देखिए, बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मनाते हैं, यानी शोक मनाते हैं, पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खास साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, बदाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौह बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। अब वो क्या कह रहे हैं कि बिस्मिल्ला खां, उनकी शहनाई और उनके परिवार का नाम जिस मुस्लिम पर्व से जुड़ा है वो क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम का महीना यानी कि इसमें जो शिया मुसलमान होते हैं वो हजरत साहब हजरत हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं और ये शोक 10 दिनों तक चलता है। बिस्मिल्ला खान जी बताते हैं कि वे और उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में इन 10 दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना संगीत के किसी कार्यक्रम में शिरकत करता है यानी शामिल होता है, यानी कोई भी खुशी नहीं मनाते क्योंकि इन लोगों को शोक मनाना था ना, दुख होता है इन्हें। और 8वीं तारीख पे जो बिस्मिल्ला साहब है वो खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में 8 किलोमीटर तक पैदल चल के जाते हैं रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं, लेकिन कोई भी राग उन्हें उस दिन नहीं बजाते। राग बजाने का निषेध है यानी राग बजाना मना होता है क्योंकि खुशी का अवसर नहीं होता है। ठीक है, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, आजादारी होती है, हजारों आंखें नम, हजार बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुहर्रम के समय में उनकी जो आंखें हैं वो इमाम हुसैन साहब और उनके परिवार को लेके नम रहती हैं यानी भीगी रहती हैं, उन्हें रोना आता रहता है क्योंकि वो शोक मना रहे होते हैं और उस समय हजारों आंखें नम होती हैं, हर कोई शोक में डूबा होता है, कोई खुशी नहीं मनाई जाती मुस्लिम परिवारों में। ये हजारों बरस की परंपरा है जो एक बार फिर से जीवित हो जाती है और मुहर्रम आखिरकार संपन्न होता है, पूरा होता है, 10 दिनों का शोक ये लोग मनाते हैं। तो ऐसे अवसरों पे जब वो देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि इतना बड़ा कलाकार जो है वो कितने साधारण से मनुष्य के रूप में इतने आसानी से दिख जाता है। आगे देखिए, मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, वे अपने रियाज को कम उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं, अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है, खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिस के हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। अब वो क्या कह रहे हैं, जब ये मुहर्रम के गमजदा माहौल शोक वाले माहौल से बाहर आते हैं तो सुकून के क्षण जो होते हैं, जो सुकून के पल होते हैं, उसमें वो अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। और इस जवानी में वो क्या याद करते हैं, वो ये याद नहीं करते कि वो कैसे रियाज करते थे, कैसे अभ्यास करते थे, बल्कि अपने जुनून को याद करते थे ना, संगीत को लेके, शहनाई को लेके जो उनके मन में एक जुनून था, जो आत्मीयता थी, जो प्यार था, वो उसे याद करते हैं। उनके जो अब्बा जान यानी जो उनके पिताजी हैं, जो उस्ताद यानी जो उनके गुरु रहे हैं, उन्हें कम याद करते हैं बल्कि पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी याद करते हैं। ठीक है, गीता वाला और सुलोचना को याद करते हैं कि सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी और ये बताते बताते उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कुराहट आ जाती है, गालों पर चमक आ जाती है। वो बताते हैं कि 80 साल के हो गए हैं खान साहब, लेकिन अभी भी उनकी आंखों में एक अनुभव है, एक चमक है और कभी भी दिल खोल के हंस देने वाली बात जो है, ये जो ईश्वरी कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि वो आज भी इतने साफ दिल के हैं कि जब हंसते हैं तो उनकी आंखों में दिखता है कि उनका दिल कितना साफ है। ये जो ईश्वर का वरदान उन्हें प्राप्त है, ये जो नेमत उन्हें प्राप्त है, वो साफ साफ उनसे बात करते हुए दिखती है। जब भी वो बताते हैं कोई भी चीज़, खुल के बताते हैं, खुल के हंसते हैं, और ये चीज़ उनके बारे में सबसे अच्छी है क्योंकि खुदा ने उन्हें बख्शा है इस चीज़ से कि वो इतने साफ दिल के रहें कि हर किसी को उनसे लगाव हो जाए, एक आत्मीयता, एक प्यार महसूस होने लगे। ठीक है, तो इतना हमने बिस्मिल्ला खान जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की। अब बाकी और भी कई रोचक बातें जो लेखक ने लिखी हैं वो हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे, है ना। आगे जानेंगे बिस्मिल्ला खान का जीवन कैसा रहा, उनके क्या क्या शौक रहे, है ना, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, ये सारी रोचक बातें जो कि लेखक ने बहुत अच्छे से, यतीन्द्र मिश्र जी ने बहुत अच्छे से पिरोई हैं इस पाठ में, वो हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।